स्तोत्र सतह डिवाइन ग्रेशल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णविंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की श्री वृंदावन धाम की श्री नवदीप मायापुर धाम की श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की गंगा मैया की यमुना मैया की विनीत विदुषी महारानी की श्री नाम सुन कीर्तन यज्ञ की श्री प्रभुपाद ट्रांसलेटर बुक डिस्ट्रीब्यूशन मैराथन की श्री लोचन दास ठाकुर आविर्भाव तिथि महा महा महोत्सव की निथाय गौर फिर मनंदे ऑल ग्लोरी सुसेंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरी सुसेंबल डिवोटीज All glories to Shishi Guru and Goranga.
गुरु वंदना दोहराएंगे हमारे गुरुदेव आध्यात्मिक गुरु के चरण कमल ही एकमात्र साधन है जिनके द्वारा हम शुद्ध भक्ति में सेवा प्राप्त कर सकते हैं। मैं उनके चरण कमलों में अत्यंत भक्ति एवं श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होता हूँ। उनकी कृपा से जीव भौतिक कलेशों के महासागर को पार कर सकता है तथा कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकता है। मेरी एकमात्र इच्छा है कि उनके मुख कमल से निकले हुए शब्दों द्वारा अपनी चेतना को शुद्ध करूं। उनके चरण कमलों में अनुराग ऐसी सिद्धि है जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करती है। वे मेरी बंद आंखों को खोलते हैं तथा मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान भरते हैं। जन जन्मांतरों में वे मेरे प्रभु हैं। वे प्रेमा भक्ति प्रदान करते हैं और अविद्या का नाश करते हैं। वैदिक शास्त्र उनके चरित्र का गान करते हैं। हे शिल प्रभुपाद करुणा सिंधु तथा पतित आत्माओं के मित्र, आप सबके गुरु एवं सभी लोगों के जीवन हैं। हे शिल कीजिए तथा मुझे अपने चरणों की छाया दीजिए। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय।
जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी राधा माधव जय कुंज बिहारी जय jaya raj janaranjana jaya jashodanandana jaya raj janaranjana जमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी जमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prabhupada, 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 Prabhupada.
Jaya Vishnu Pad Paramahansa, Bhari Raj Gacharya, Shri Sadashiv Srimad, Vachana Aravind Bhakti Vedanta Swami, Jagadguru Shri Prabhupada ki jaya. समस्त गुरु परंपरा की जाए नाम चल श्रीदास ठाकुर की जाए प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सुभाषादि गौर भक्तवृंद की जाए श्री श्री राधा राधिकरण भगवान की जाए श्री श्री कृष्ण बलराम की जाए श्री गौरनिताय की जाय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जाए उपस्थित भक्तवृंद की जाए अनंतकोटि वैष्णव वृंद की जाए इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जाए निताय गौर सितनाथ प्रेमानंद हरि हरि बोल ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्णा All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories to the assembled devotees, Hare Krishna. All glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gaurana. Hare Krishna. सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत कक्षा में और अभी हम लोग यहाँ पर दशम स्कंद भागवतम अध्याय संख्या 5 और इस अध्याय का शीर्षक है नंद महाराज तथा वसुदेव की भेंट और ये अध्याय तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा से चल रहा है अब और नहीं चलेगा आज खत्म हो जाएगा आज आखिरी के श्लोक है तो इसका पारायण जो है यहीं पे आज हम समाप्त करेंगे हमारे बीच में विशेष अतिथि भी हैं सर्वप्रिय प्रभु जी का हम स्वागत करते हैं यहाँ पर सर्वप्रिय प्रभु इज क्वाइट अ स्कॉलर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर lot of preaching, especially congregation preaching from Radha Parsati temple, apart from youth preaching. So, सर्वप्रथम हम मंगलाचरण करेंगे उसके बाद हम क्रम को आगे बढ़ाएंगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती नोत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिके शृण्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवण कीर्तना हृदयन्तस्तहि अभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम् ओम ज्ञानस्य मिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितामिश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नितिनामिने नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे ओके तो तीसवा श्लोक जैसे कि यहाँ पर बोर्ड पर मौजूद है और कैसे करें वैसे जैसे आज बड़ा विशेष दिन है, आज लोचनदास ठाकुर का आविर्भाव दिवस भी है, तो जैसा हम जानते हैं लोचनदास ठाकुर उनके खास तौर पर जो किताब चैतन्य मंगल, तो जिससे हम काफ़ी कुछ जानने को हमें मिलता है महाप्रभु के वो पहलू, खासतौर पर नवदीप के पहलू, वो कई पहलू जो है जो चैतन्य चिदामृत में कृष्णदास कविराज ने उन चीज़ों को कवर नहीं किया, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर चैतन्य मंगल ग्रंथ में जो है लोचनदास ठाकुर ने वो, क्योंकि महाप्रभु के समसामयिक थे, उनके सहपाठी थे इनफैक्ट और दोस्त थे, तो हम कई बार जानना भी चाह रहे होते हैं अक्सर महाप्रभु के शिष्य और महाप्रभु के अनुयायी के बारे में जो है हमको जानकारी ज़्यादा मिलती है, दोस्तों के बारे में थोड़ी कम मिलती है। सो ही इज़ वन ऑफ दोज फ्रेंड्स महाप्रभु के, तो कई बार ये होता है कि महाप्रभु को जो है अगर कोई सखा के रूप में जो है अगर महाप्रभु की सेवा करना चाहे तो वो स्कोप है कि नहीं है, पर जब दोस्त हैं तो स्कोप है, जो नहीं है उसका स्कोप नहीं है, तो एटलीस्ट हमें नहीं पता, ऊपर जाके क्या है क्या नहीं है ये बताना मुश्किल है, जो यहाँ से दिखाई देता है उसके हिसाब से बताया जा सकता है, क्योंकि ये कहना भी बड़ा डेंजरस है कि ये नहीं है वो चीज़ जो दुनिया में मौजूद है और वहाँ दुनिया में नहीं है, इसका मतलब है वो दुनिया लिमिटेड है और ये अनलिमिटेड है नहीं ऐसा, तो मगर हमारे साधकों के लिए जो है एक विशेष रवैया जो है वो कारगर साबित होता है। लोचनदास ठाकुर उन भक्तों में से एक हैं जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के विषय में चैतन्य मंगल, और जो कि बाद में जाके जो है ये चैतन्य मंगल नाम जो है इसको लेके भी जो है बड़ी खींचतानी है, क्योंकि फिर वृंदावन दास ठाकुर की किताब, फिर वो बनी चैतन्य मंगल, फिर वो चैतन्य भागवत बनी, फिर चैतन्य चिंतामृत, उन्होंने बताया कि नहीं नहीं वो पहले वो ग्रंथ इस नाम से मशहूर थी, अभी इस नाम से मशहूर है, तो बड़ा ये नाम जो है क्योंकि चैतन्य मंगल चैतन्य महाप्रभु का जो है मंगल गान, तो इस तरीके से और वो पहलू महाप्रभु के एक एक सखा के दृष्टिकोण से जो है काफ़ी महत्वपूर्ण किताब उन्होंने लिखी। और लोचन दास ठाकुर के कई भजन भी हैं जो हम गाते हैं और उनके बहुत ही एक्चुअली रस से बड़े बड़े निगूढ़ भजन हैं। तो दीज आर लाइक रियली, हालांकि भजन हर स्टेज के भक्तों को जो है पढ़ सकते, पर जिसकी रियलाइजेशन है, उसकी जो अनुभूति है, जो जो जहाँ तक पहुँचा है वो उस तरीके से उसका आस्वादन कर सकता है, उसको समझ सकता है। तो कई भजन ऐसे हैं जो वाकई में उसके लिए जो है भक्ति में आगे बढ़े चढ़े होने से जो है उनका पूरा लाभ उठाया जा सकता है, उनको ठीक से समझा जा सकता है। सो मोटा मोटा जो लोचन दास ठाकुर के बारे में मुझे ध्यान आ रहे हैं तो इस तरीके से हैं। और उनकी समाधि 64 समाधि में है जितना मुझे ध्यान आ रहा है, इसलिए 64 समाधि। सो वृंदावन में वो एक समाधि स्थल ऐसा है जहाँ पर जो भी आपको वन स्टॉप शॉप जैसे हम कहते हैं, ये सुपरमार्केट कॉन्सेप्ट मटेरियल है, बट वो एक जगह जहाँ पर सभी महाप्रभु के जो है पार्षदों की स्मृति एक जगह मिलती है वृंदावन में। तो 64 समाधि क्षेत्र वहाँ जाए तो एक बार में जो है हम 64 से ज़्यादा बंतों के दर्शन होते हैं। बस हाथ में डंडा लेके जाइए क्योंकि वहाँ पे इंसान कम बंदर ज़्यादा होते हैं, तो इट्स वेरी डेंजरस प्लेस अदरवाइज, बट इट्स अ वेरी पावरफुल प्लेस। गोविंददेव समाधि समाधि मंदिर के ऑपोजिट सड़क के उस तरफ लोचन दास ठाकुर आयु अतिथि महामहोत्सव की जय। ठीक है, तो हम 30वां श्लोक है इसका सामूहिक उच्चारण करेंगे और उसके बाद 31 और 32 जो है उसका उसका कोई तात्पर्य नहीं है, तो हम उसका फिर हम अनुवाद सीधा सीधा अनुवाद पे चले जाएंगे। नूनम हि अदृष्टा निष्ठो वयम्, आदृष्ट परमो जना आदृष्टमात्मनस्तत्वम्, यो वेदा न समुयति नूनम्यदृष्टा निष्ठोऽयम् आदृष्टा परमो जना आदृष्टमात्मनस्तत्वम् यो वेद न स मुह्यति मुह्यम् हि अदृष्टो निष्ठोऽयम् आदृष्टा परमो जना आदृष्टमात्मनस्तत्वम् यो वेदा स न मुह्यति। प्रभु जी इसमें से माता जी
Thank you.
धन्यवाद। तो हम शब्दार्थ पढ़ेंगे, हमारे विषय द्वारा ही शब्दार्थों का अनुवाद तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। नूनम निश्चय ही निसंदेह अदृष्टा अनदेखा निष्ठा अयम यही अंत है। अदृष्टा अदृष्ट प्रारब्ध परमहा परम जनहा संसार का हर जीव अदृष्टम वही प्रारब्ध आत्मनहा अपना ही तत्वम परम सत्य यह जो वेद जानता है ना नहीं सह वह मोहयन्ति मोहग्रस्त होता है। अनुवाद सुनिए। दरअसल दर्शन जो है वो बोल रहे हैं आनंद महाराज जो है वासुदेव को, वासुदेव को सॉरी, प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रारब्ध द्वारा नियंत्रित होता है क्योंकि उसी से मनुष्य के सकाम कर्मों के फल निर्धारित होते हैं। दूसरे शब्दों में आदृष्ट प्रारब्ध के कारण ही मनुष्य को पुत्र या पुत्री प्राप्त होती है और जब पुत्र या पुत्री नहीं रहते तो वह भी आदृष्ट प्रारब्ध के कारण ही होता है। प्रारब्ध ही हर एक का अंतिम नियंत्रक है। जो इसे जानता है वह कभी मोहग्रस्त नहीं होता। इस तरह का श्लोक भागवत गीता में कुछ है, भगवान कहते हैं मुझे जानता है, मेरे कर्मों को जानता है, वो मोहग्रस्त नहीं होता। तो पर अब ये जो है एक प्रारब्ध नाम की भी चीज है, वो जानते हैं तो मोहग्रस्त नहीं होता। तो आइए देखें नंद महाराज जो है यहाँ क्या कह रहे हैं, तात्पर्य में प्रभुपाद देखिए बता रहे हैं। तात्पर्य नंद महाराज ने अपने छोटे भाई वसुदेव को यह कहकर ढाढ़स बधाया कि अंततोगत्वा प्रारब्ध ही प्रत्येक बात के लिए उत्तरदायी है। वसुदेव को इस बात से दुखी नहीं होना चाहिए कि उसकी अनेक संतानें कंस द्वारा मार दी गई हैं, अथवा इसलिए कि उनकी अंतिम संतान जो एक कन्या थी स्वर्गलोक चली गई है। तो छोटा सा तात्पर्य है, आगे बाकी के दो जो श्लोक हैं इनके मैं अनुवाद पढ़ देता हूँ तो आपको क्रम पूरा हो जाएगा। बस अब ये बोल चुके जो उन्होंने बोलना था नंद महाराज, या वसुदेव जवाब दे रहे हैं। वसुदेव ने नंद महाराज से कहा, मेरे भाई अब तो आपने कंस को वार्षिक कर चुका दिया है और मुझसे भी भेंट कर ली है, अतः इस स्थान पर अब अधिक दिन मत रुको, गोकुल लौट जाना बेहतर है क्योंकि मैं जानता हूं कि वहां कुछ उपद्रव हो सकता है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब वसुदेव ने नंद महाराज को इस प्रकार सलाह दी तो नंद महाराज तथा उसके संगी ग्वालों ने वसुदेव से अनुमति ली, अपनी अपनी गाड़ियों में बैल जोते और सवार होकर गोकुल के लिए प्रस्थान कर गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध के अंतर्गत नंद महाराज तथा वसुदेव की भेंट नामक पांचवें अध्याय का भक्तिविधान तात्पर्य पूर्ण हुआ। ठीक है, सो अभी तक नंद महाराज जो है वसुदेव को जिंदगी की सच्चाइयां बता रहे थे और फिर वो सबको सुनने का जो जवाब, उसके बाद जो जवाब था वो ये था। देखिए दरअसल क्या होता है, जब हमें कोई दर्शन समझाता है, फलसफा समझाता है, तो हम बहुत शुक्रगुजार होते हैं। हमने कहा, हम कहते हैं ना, प्रभु जी अच्छा हुआ आपने बड़ा एनलाइटन किया। भक्तों जनरली साधक भक्तों में जो है कुछ डायलॉग कॉमन होते हैं, है ना। अगर बोले कि ये डायलॉग इस्तेमाल नहीं करता बंदा गूंगा हो जाएगा, उनमें से एक ही है कि प्रभु जी आपके आपका क्या कहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने बड़ा अच्छा बताया, और फट से आप पूछ लो कि क्या अच्छा बताया, बताओ दो चार पॉइंट उसके अंदर से, तो फिर वो गूंगे के साथ साथ बहरा भी हो जाता है तो मगर फिर भी तो यहाँ पर जो जब उन्होंने इतना पूरा दर्शन बताया तो यहाँ पे ऐसा देखा नहीं जा रहा है एटलीस्ट कि वासुदेव ने जो है वासुदेव ने जो है नंद महाराज का कोई भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने सीधा बोला देखो ये बात सुनो, तुम यहाँ पर घूम रहे हो, कारवा दे दिया ना, आप जाओ वापस जाओ गोकुल जाओ, ठीक है, और वहाँ जाके जो है वहाँ कुछ हो सकता है, ऐसा अंदेशा है, तो जाओ जाके अपने बच्चे की सुरक्षा करो। तो ऐसा क्यों है, ऐसा जो है तो हम देखेंगे। जैसे अभी यहाँ प्रभुपाद जैसे बता रहे हैं कि पहले तो ये कि नंद महाराज ने क्यों ऐसे वसुदेव का ढारस बनाया कि जिसके मतलब इतने दिनों बाद मुलाकात हुई है, और वो कब मुलाकात हुई है, अपने जो है सात बच्चे खोने के बाद प्रैक्टिकली स्पीकिंग, तो अब इस तरीके से उनसे वो मिलके जो है उनका हिम्मत बढ़ा रहे हैं। तो एक तरफ इधर से ये है और उधर से बिल्कुल उल्टा है। उधर से वसुदेव को ये चिंता हो रही है जो चले गए वो चले गए, जो है उसको हाँ उसको कोई नुकसान ना हो जाए तो तुम वापस जाओ, जबकि वसुदेव ने ये बात नंद महाराज को बताई नहीं है कि भाई मैं बच्चा एक्सचेंज कर चुका हूँ आके, ठीक है ना। तो ये नहीं, इनफैक्ट वसुदेव अंदर से बहुत खुश हैं कि चलो बात किसी को नहीं पता, तो ऐसा हो नहीं सकता था कि अगर नंद महाराज को ये बात मालूम पड़ गई हो तो वो आके वसुदेव से बात करे ना, मिले दुनिया भर की बात करे, उनको फिलॉसफी समझाए जिंदगी की हकीकत क्या होती है, और ये ना बताए कि भाई तुम्हारा बच्चा मेरे घर में सेफ है, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि वो वसुदेव अंदर से उनको बहुत तसल्ली है कि मैं नहीं कह रहा जी गोस्वामी कह रहे, तो कि वो बहुत उनको तसल्ली थी कि चलो ठीक है बच्चा जो है हमारा सेफ है। पर अब उनको चिंता लग गई है कि क्योंकि वो नंद महाराज गोकुल से आए हैं, उनको यहाँ का नहीं पता, वसुदेव यहाँ रहते मथुरा में, उनको यहाँ का सब पता है कि यहाँ क्या चल रहा है पीछे से, यहाँ जो है कंस ने बच्चे मारने की स्कीम बनाई हुई है। तो फिर इसीलिए जो है उन्होंने बोला तुम जल्दी जल्दी वापस जाओ, तो उनको पता लगा है कि ये अब हमला करेंगे इस तरीके से। अब मजेदार बात क्या है कि ये ज्यादा दिन पुरानी बात नहीं, इनफैक्ट ये जो चैप्टर है अगर आप देखें इस अध्याय में शीर्षक है नंद महाराज तथा वसुदेव की भेंट, जो कि अंत में हो रही है, पर अध्याय की शुरुआत में आप देखते हैं कि हम कि जन्माष्टमी इनफैक्ट है ना, जन्माष्टमी सेलिब्रेट हो रही है, या यूं कह लो नंदोत्सव सेलिब्रेट हो रहा है। जन्माष्टमी तो खैर मतलब हम सेलिब्रेट करते हैं, तो हाँ तो नंदोत्सव सेलिब्रेट हो रहा है, तो कृष्ण जन्म तिथि जो है वो उसके तो इस तरीके से रूप गोस्वामी की किताब भी है कृष्ण जन्म तिथि विधि, जिससे जो है हम लोग जन्माष्टमी सेलिब्रेट करते हैं पूरा प्रोसीजर। खैर तो वो नंदोत्सव अब सेलिब्रेट हुआ और नंदोत्सव बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट हुआ। अब देखो पीछे से लाखों लाखों गाय दी गई है, सोना चांदी बांटा गया है, कहीं पे भी जहाँ पर भी जो है दान पुण्य हो इस तरीके और स्केल का हो तो खबर कैसी फैलती है, आग की तरह फैलती है, ठीक है ना। तो एक आदमी जो आपके जान के पीछे पड़ा हुआ है, जिसने ये बोला है कि भाई किसी को नहीं बख्शना, सबको मार डालो और एक भी बच्चा नहीं बचना चाहिए, तो उसके वहां पर इतना धूमधाम से ये नंदोत्सव मनाया गया। और मजे की बात है कि कंस को कानो कान खबर नहीं हुई, कॉन्ट्रडिक्शन सोचो ना कि कोई आ सकता है कि भाई इस तरीके से उन्होंने करने के बाद तो कोई और बचे ना बचे सबसे पहला टारगेट ही होना चाहिए था, तो कैसे बच गया। तो जाहिर बात है यहाँ पर जो है सनातन गोस्वामी बताते हैं इसके इस क्वेश्चन को रेज करके खुद ही कि क्योंकि भगवान की दुयोग माया का जो है ये प्रभाव है कि इस पूरे वृंदावन को पता था पर इसको नहीं पता था कंस को कि इन्होंने जो है और ये अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार का समझता फिर रहा था कि तो सारे बच्चे मार दो, ठीक है ना। तो और जाहिर बात है उसको पता करने के लिए किस किस के घर में बच्चा पैदा हुआ है उसके लिए जासूस भी छोड़े थे, तभी ना पता हुआ। तो उसने जो बच्चे मारने के लिए जासूस छोड़े और जिसको ढिंडोरा पीट के मनाएगा उसका नंदोत्सव, उसके बारे में उसको नहीं कोई अता पता था। तो खैर तो यहाँ पर जो है अब नंद महाराज ने बोला कि भाई अब आप जाओ क्योंकि ऐसा हो सकता है, तो सॉरी वसुदेव ने बोला जय श्री राधा भगवान की, जय श्री कृष्ण बलराम की, जय श्री गोलिताय की, जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रावाणी की। तो अब ये वसुदेव ने का जो है ये इस तरीके का रिएक्शन था, क्योंकि लगा कि यार ये तो आराम से घूम रहा है यहाँ पर, कभी कुछ हो गया पीछे से। तो अब ये सारा का सारा जो ये सब चीजें जो हैं, जाहिरी बात है इसको अगर हम कैलकुलेटिव तरीके से देखेंगे इन चीजों को, जैसे होता है ना कि जैसे हम हिसाब किताब के दायरे में जब इन चीजों को देखते हैं तो ये सेंस नहीं बनती कई बार चीजों की, क्योंकि ये हिसाब किताब के बाहर की चीजें हैं। नहीं तो हिसाब किताब के अगर नजर से हम देखें तो सबसे पहली बात ये आ जाएगी, वो भगवान है तो अपनी रक्षा खुद ही कर लेंगे, ठीक हो गया ना। इसका मतलब क्या है, ये आप इस तरह की ये इस तरह के सोच लो और सारी लीला जो है वो समाप्त, और लीला समाप्त होना हो सोचने वाले की जिम्मेदारी समाप्त, तो वो हाँ वो बिल्कुल जिम्मेदारी से बरी हो गया। और अगर ये सेवा है, अगर वो उस तरीके से सेवक जब इसको देखता है या जो सेवा करना चाहता है वो इस मूड को समझना की कोशिश करके फिर बाद में उसको प्रैक्टिस करके फिर अपनी जिंदगी में उतार के फिर जाके इसकी अनुभूति करना, तो उसके लिए ही है। तो इसीलिए हम जानते भी हैं जैसे अर्चविग्रह है तो उनके लिए होता है कि जो अर्चविग्रह की जो सेवा कर रहे हैं उसका सबसे महत्वपूर्ण दायित्व जो है, उसका जो जिम्मेदारी है वो ये है कि वो ये देखे कि जो है अर्चविग्रह सुरक्षित है, यही प्रिंसिपल है, वो यहीं से आया है। कि तभी इन्होंने बोला कि तुम जो है आप भाई वापस जाओ, टैक्स दे दिया हो गया, जाओ यहाँ से, अब उधर जाओ वहाँ कुछ भी हो सकता है। तो ऑब्वियसली इनको कहीं ना कहीं नंद महाराज के जान की भी फिक्र थी कि इन्हीं को ना दबोच ले अब, तो क्योंकि उनको पता है ना वसुदेव को कि मैंने बच्चा कहाँ छुपाया है, इन्हें तो नहीं पता है, तो आराम से घूम रहे हैं, जब घर से बच्चा बरामद होगा तो दोनों पकड़े जाएंगे। तो इसलिए जो है तो वो उन्होंने बोला तुम जाओ जल्दी जल्दी जाओ। अब इधर जो है वसुदेव जो है ये बोल रहे हैं, पर नंद महाराज जो है वो जब बड़ा ढारस दिलवा रहे थे इनको, जैसे प्रभुपाद लिख रहे हैं बता रहे हैं, तो उन्होंने क्या इस्तेमाल किया ढारस बधाने के लिए, तो बेसिकली जिसको हम कर्म मीमांसा फिलोसफी जो है जैमिनी मुनि का जो फिलोसफी है यही है, अदृष्ट पे फोकस करना, यानी कि बेसिकली है ना क्या कहते हैं उसको हिंदी में कहते हैं, बिकावतें हैं हमारे यहाँ की लोकल, अच्छी नहीं है पर समझने के लिए बहुत काफ़ी है, जैसे कहते हैं किस्मत मेहरबान तो गधा पहलवान, तो वो वाला सिस्टम जो है, तो वो जो है वो कर्म मीमांसा फिलोसफी से, ठीक है ना। दरअसल वो ये कर्म मीमांसा की जो फिलोसफी है मतलब ये कि दो पहलू, एक हो गया कि देखो जी एक जो मेरा कर्म है वो उससे मैं बधा हुआ हूँ, उससे जो है आप अपना कर्म कभी खत्म नहीं होता पहला, और कर्म ऐसा इतना बलवान है कि वो जो है भगवान को भी बांध देता है ना, जैसे वो पिक्चरों में था, पहले बहुत पुराना पिक्चर था, पहले पुरानी पिक्चर देखने की आदत थी, वो भारत भूषण की मूवी थी, उसमें अंदर था गाना था, देख तेरे किस्मत के कारण वन में गए रघुराई, किस्मत का लेख मिटे ना भाई। तो किस्मत इतना बलवान है कि रामचंद्र को बनवास दिलवा दिया, रामचंद्र का कर्म नहीं मिटा, ठीक हो गया ना। तो उनका जो फिलॉसफी है वो कर्म मीमांसा से वो सब कुछ डिफाइन कर देते हैं कि अगर भगवान भी जो है वो भी कर्म से बंधे हुए हैं, तो कर्म जो है ये फिलॉसफी अधूरी है, तो इस्तेमाल हो सकती है जैसे यहाँ पर नंद महाराज ने इस्तेमाल करके दिखाई वसुदेव के लिए, तो हर चीज़ इस्तेमाल हो सकती है दुनिया में, हर चीज़ इस्तेमाल हो सकती है, पर जैसे हर चीज़ इस्तेमाल हो सकती है हर चीज़ का दायरा भी है। तो इसका जो जाहिर बात है जो दायरा यहाँ पर ये है कि जब ये बात सच है, अदरवाइज अगर आप भगवान के फैक्टर को बीच में नहीं लाते तो यह बिल्कुल सच है, और इसीलिए दुनिया में जो महज भक्ति नहीं बल्कि तीव्र भक्ति तक नहीं पहुंचते हैं उनके लिए ये बिल्कुल हूबहू लागू होता है, उनका नहीं मिटता क्योंकि उसका थर्ड फैक्टर ही कोई नहीं है उसके अंदर, तो भगवान का फैक्टर ना होने की वजह से, तो इस हाथ ले इस हाथ दे, वो जो है ना एज यू शो सो सोशल यू रीप वाला जो सिस्टम है तो उन पे होता है, जैसा बोगे वैसा काटोगे वाला सिस्टम जो है वो चलता है। मगर साधक भक्तों को जो है इन इन बारीकियों को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर अक्सर देखा जाता है मैं अपना तजुर्बे से मैंने देखा है लिमिटेड तजुर्बे में, कई बार जैसे व्हाट्सएप मैसेजेस भी आते हैं उसमें इसी तरह के मैसेजेस होते हैं जो भक्ति भक्त को भेज रहे होते हैं, तो एक जो है नासमझ दूसरे को भेज रहा होता है, दूसरे 10 नासमझ उसको सपोर्ट भी कर रहे होते हैं, तो उनमें से कोई समझदार अगर बोले ये चीज़ ठीक नहीं है तो उसके गले पड़ जाते हैं सारे, है ना। तो उसकी वजह क्या है कि पढ़ते नहीं अक्सर, तो वो उसमें तो वो ऊपर से देखने में ठीक लगता है कि जी कर्मा जिसने जैसा किया है उसका वैसा होगा, इस दुनिया का जो जस्टिस सिस्टम भी है जो हमारे जो हर मुल्क का लगभग जो जस्टिस सिस्टम है इसी पे बेस्ड, कि जिसने जैसा कराया उसके हिसाब से जो उसका अंजाम जो उसको भुगतना चाहिए, तो वहां तक जो मामला ठीक है, तो वहां तक ठीक है। मगर जब आप इसको काटना चाहते हो इस कर्म को, तो उसके काम नहीं आएगा ये, क्योंकि वो अपने आप ही वो चीज बता रही है कि ये कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला है, क्योंकि एक कर्म जो है दूसरे, जैसे हम ये भक्ति रसामृत सिंधु में जो पूरा जो साइकिल है ये कर्म का जो चक्र शुरू में ही, इनफैक्ट भक्ति रसामृत सिंधु में बिल्कुल शुरू के ही चैप्टर्स में जो है रूप गोस्वामी ने पहले ये चीज बता दी है, क्योंकि वो बताना जरूरी है, क्योंकि ये समझने के बाद जो है वो भक्ति की विशेषता को और भक्ति का जो महत्व है उसको ज्यादा, उसकी ज्यादा सराहना कर पाएगा, कि अगर ये भक्ति नहीं होती तो बिल्कुल खेल खत्म था। तो अगर भक्ति नहीं होती तो फिर कर्म जो है वो अनादि नहीं होता, सिर्फ अनंत भी हो जाता, वो निकल नहीं पाता। तो जैसे भागवत गीता के जो मूल विषय है उनमें से कर्म ही एक ऐसा विषय है जो अनादि जरूर है पर अनंत नहीं है, इसीलिए जीव निकल पाता। अनंत किस लिए नहीं है? भक्ति के वजह से नहीं है। अगर कोई तीव्र भक्ति करता है तो फिर वो खत्म करने की, कर्मानि निर्दयति किंतु च भक्ति भाजा, यानी कि एक स्टेज में कहाँ पर कर्म खत्म होते हैं बेसिकली, लाइक जब आपका पूरा मिट जाने वाला सिस्टम जो है भाव भक्ति का जो स्टेज है वो, एंड उसके बाद प्रेम भक्ति पूरा फिनिश हो जाता है, उससे पहले जो कर्मा रहेंगे, जितना जितना भक्त आप भी भक्ति बढ़ाते जाएंगे, श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया अनंत निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति, उतना होता कर्म खत्म होता होते 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 भाव भक्ति इज द स्टेज, जिसके बाद जो है कर्मा फिनिश हो जाते हैं, जल जाते हैं सर वो कर्मानि निर्दयति जो है वो भक्ति भाजा जो है वो इसके लिए, तो ये मिनिमम स्टेज है। तो वहाँ पर उससे, उसके पहले जो है ये मुमकिन नहीं है कि आप कर्मा को किसी और चीज़ से जो है ख़त्म कर सको। तो मगर जो है हाँ, कमज़ोर आदमी के लिए, नासमझ आदमी के लिए, मायूस आदमी के लिए, उसको जो है दिल को तसल्ली देने के लिए ये फलसफा अच्छा है। मगर अगर वो अपनी मायूसी से आगे, अगर आप उसको उम्मीद दिलाना चाहते हैं वाकई में, झूठ नहीं बोलना चाहते, वाकई की उम्मीद दिलाना चाहते हैं, वाकई में उसको रास्ता दिखाना चाहते हैं, उसको सच बोलना चाहते हैं, तो आपको उसको ये सच्चाई बतानी पड़ेगी कि ये सब छोड़ो, ये तीव्र भक्ति की तरफ आओ, ये कच्चा पक्का भी नहीं चलेगा, ये तीव्र की तरफ आओ निकलना चाहते हो तो वो जो मामला है। सो ये तो यहाँ पर जो है, जैसे ये जो संवाद है दोनों का जो है, नंद महाराज जी वसुदेव का, ये जीव गोस्वामी बताते हैं कि जैसे कि दो आम आदमी जैसे बात करते हैं, तो उस तरीके से दो आम आदमी की तरह जो है ये आपस में बात कर रहे हैं, जो कि ये भी एक लीला के अंदर का ही जो है अपने आप में हिस्सा है ये चीज। तो खैर, या बोल चुका जो मुझे बोलना था। सो अगर किसी का कोई प्रश्न या इसमें कोई टिप्पणी हो या कोई करेक्शन हो तो फिर ज़रूर आप ऐड करें। जी प्रभु जी, ज्योतिष प्रभु जी,
हरे कृष्णा। तो जैसे आपने बताया कि कर्म जो होता है वो, मतलब वैसे तो कर्मानि निर्दयति च भक्ति भाजा, कर्म नष्ट हो जाता है, फिर साथ साथ जैसे आपने मेंशन किया कर्म अनादि होता है, तो मतलब इसको कैसे समझे, दोनों को रिकंसाइल कैसे करें?
ऐसे समझो जैसा है। कैसे समझो, मैं भी ऐसे ही समझता हूँ। जैसे आप अनादि चीज को कैसे समझो, ये तो प्रश्न अपने आप में बड़ा ना वो है। अब जो चीज अनादि है उसको कैसे समझे बंदा, कोई नहीं, उसको समझना बड़ा मुश्किल है। तो यही समझो कि अनादि है, यानी कि जहाँ तक जो है दिमाग जाते हैं वहाँ तक चले जाओ, तो उसके बाद जब ना जाए तो हथियार डालने का टाइम बताओ, इसको अनादि कहते हैं। सच कह रहा हूँ, ऐसे ही है, ऐसे ही समझ आती है, तो समझ नहीं आती, क्योंकि सबका अनादि का अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है। जिसका दिमाग ज़्यादा तेज़ हो, ज़्यादा दूर तक चला जाएगा तो और तेज़ और दूर तक चला जाएगा। इंसानी लिमिट सबकी इंडिविजुअल है, तो हर कोई जब जाके बस कर लेता है तो उसके बाद फिर अनादि है।
जैसे नॉर्मल, जैसे हम कर्म मतलब एज ए पर्टिकुलर शब्द की तरह देखेंगे तो एक्टिविटी की तरह ही हम समझते हैं।
हाँ, एक्टिविटी है ना।
तो जीव का भी तो एक्टिविटी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है ही। हाँ। तो सारा जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के तो वो उसको मतलब
जाहिर बात है ये वाला कर्म जो है वो उसकी बात नहीं हो रही है, क्योंकि ये तो उसके बाद का इशू है। ये जो कर्म आपका बन रहा है ये उसके बाद बन रहा है। ये कैसे बन रहा है? जब आप चलिए बड़ा आपने, बल्कि अच्छा हो गया आपने छेड़ दी। हमारे बैक टू गॉड का स्लोगन क्या है? चैतन्य चेतामृत से
गॉड इट इज लाइट एंड
या वो या बिल्कुल
सूर्य सम माया अंधकार
हाँ कृष्ण या उसके बाद क्या कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार
जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार
ओके तो ये श्लोक अगर ऐसा बोले है जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया ठीक है कि गलत है जहाँ कृष्ण होते हैं वहाँ माया होता है होती है नहीं होती ना जहाँ कृष्ण होते हैं वहाँ माया होती है क्या नहीं होती तो फिर माया अधिकार बोलने की क्या जरूरत है माया ही नहीं ना ना माया है ना अधिकार है ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी पर हकीकत ये बांस है इसीलिए बांसुरी भी है वजह क्या है इसलिए वो बहुत सोची समझी तरीके से लिखी गई है वो इसी से कनेक्टेड है वो कनेक्शन जो है वो वहां से पहला मिसकंसेप्शन जो निकलता है वो पढ़ने के बाद भी नहीं वो बंदा क्योंकि क्या होता है ना एक आंखें जो है वो अल्फाज पढ़ रहे होते हैं दिमाग इंटरप्रेट कर चुका होता है तो इसलिए माया अधिकार पढ़ने के बाद समझ यही आता है जहां कृष्ण है वहां माया नहीं वो कह रहा है माया अधिकार नहीं है वो कहते नहीं माया नहीं है माया का होना ना होना और माया का अधिकार ना होना ना होना बिल्कुल दो अलग अलग बातें ठीक है ना तो ये अब आप व्यासदेव का जो रियलाइजेशन है फर्स्ट कैंटो में तो वहां आप देखते हैं वो कह रहे हैं कि माया तत्पाश्चर्य कि माया उनके पीछे है तो माया वहां मौजूद है अधिकार नहीं है उसका अगर वहां माया मौजूद नहीं है तो फिर वो जो दूसरा श्लोक है चैतन्य चेतामृत का कि कृष्णा निकटस्थ माया तारे झापटे कृष्ण है ना भोगवंचा करे तो माया तो निकटस्थ है तभी झापटे दौड़े ना वहां है ही नहीं तो झापटे अचानक कहां से प्रकट होगी तो ये है जो झापटे धरने के बाद जो होता है वो जब हम धरे जाते हैं उसके बाद मेरा अनादि कर्म शुरू होता है वो मेरा अनादि कर्म है बिकॉज दैट इज वो एक्सप्लेन करना कि व्हाट हैपेंड तो इसीलिए वो अनादि है मगर वो अनंत नहीं है बिकॉज ऑफ भक्ति ठीक है ना क्योंकि ये जो अंडरस्टैंडिंग है जो हम न्यूटन्स लॉ जो हम पढ़ते हैं एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन एक्चुअली ये इक्वल एंड ऑपोजिट की अंडरस्टैंडिंग भी बड़ी वो है सब्जेक्टिव है ना कि हमारे यहाँ इक्वल एंड ऑब्जेक्ट ऑपोजिट का जो मतलब होता है वो हम क्वांटिफाई करते हैं इतना क्वांटिटी है तो इतना क्वांटिटी है बट अगर आप क्या कहते हैं शास्त्र उठाओ तो वहाँ पर इस तरह नहीं है एक मैंने गाय मारी थी वो बता रहा है कि जितने बाल थे उतने बार मारे जाओगे अब बताओ कहाँ से इक्वल एंड ऑपोजिट उन मायनों में जिन मायनों में हमें सोचने की आदत है उस मायनों में डिस्प्रोपोर्शनेट है सो वो उस तरीके का नहीं है वो इतना मतलब इतना लैटरल सॉरी वो इतना लीनियर नहीं है तो इसलिए कर्मा इज लाइक इसीलिए कर्मा इतना सटल है कर्म ना कहना गति इसलिए बोला गया है कि इसका क्या बन जाएगा किसका क्या बन जाएगा पता ही नहीं लगता कि एक काम मैंने किया उसका पांच जन्म सात जन्म तो कई बार पीरियड्स में मिल रहे हैं कभी पूरा मिल गया तो पांच सात सात जन्म के बाद मिला अच्छा फिर वो एक मिला उसके साथ उसका जो मैंने उसको एग्जीक्यूट करा उसका संस्कार छप गया और वो और करवाएगा तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड मामला है तो उसका इसीलिए ये है कि भक्ति से अगर आप कर्मा से कर्मा बर्न करने जाओ तो बड़ा मुश्किल है जैसे ज्ञान से कर सकते हो आप काम ठीक है ना आप फोर्थ कैंटर में फोर्थ चैप्टर में भागवत गीता में देखते हो कि आप ज्ञान से जो है आप जला से बर्न कर सकते हो पर ज्ञान से कर्मा बर्न कर सकते हो संस्कार बर्न नहीं होता वो फिर करवाएगा तो इसीलिए जो है घूम फिर के बाद यहीं आ जाती कि आप जो है भक्ति से जो है संस्कार से लेकर सारा वो चेंज कर देना वो तभी जाके वो कर्मा पे स्टॉप लगता है एंड देन आप इटर्निटी को प्राप्त करते
भगवत गीता में जो पांच विषय में जो कर्म आता है वो ये वाला कर्म जो जल जाता है नष्ट हो जाता है वो वाला कर्म
जाहिर बात है आध्यात्मिक उसको तो आप कर्म कहते भी नहीं ना वहाँ का कर्म का हम समझाने के लिए कहते हैं कि भाई कर्म अकर्म विकर्म अब वो लीला है उसको क्या कर्म अकर्म बेड़ागर कर दिया भूल किस तरीके वो लीला और चीज होती है ये इस आपको ना ये नहीं कि उधर क्या है इधर से क्या दिखाई दे रहा है तो जो पर्सपेक्टिव होता है क्या मतलब कि मैं इधर से ऐसे दिखता है उधर से बिल्कुल कुछ और है इट्स लाइक इससे प्रॉपर इसको कहते थे विंडोज टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड अब विंडोज टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड तो जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बाहर से विंडो ही दिखेगा ना उसको अंदर क्या वो विंडो क्या उसका तो पूरा खुला मैदान है तो यहाँ से जितना दिखाई देता है उस तरीके से हम उसको डिफाइन करते हैं कि ये कर्म हो गया अकर्म हो गया विकर्म हो गया और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या कर्म विकर्म कर्म सारा कुछ वहीं से निकलता है तो वो उस तरीके से है एक बंदे को समझाने के लिए यहाँ से यू हैव टू यूज सर्टेन थिंग्स सो दैट ही कैन कॉम्प्रिहेंड
भगवान के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये तो सृष्टि लीला के अंदर ही आता है,
तो सब कुछ ही लीला के अंदर आता है वो ठीक है, पर प्रॉब्लम ये है कि मेरी दृष्टि भगवान की दृष्टि के बराबर नहीं है, इसीलिए मैं जूते घमरू, वो हो जाए तो फिर बात ही खत्म, बट नहीं है इसलिए मैं वो प्रिज्यूम नहीं कर सकता, ठीक है ना, मैं वो नहीं प्रिज्यूम कर सकता उस चीज को, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता उस चीज को कि भगवान इसको कैसे देख रहे हैं, हाँ 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 भगवान को बड़ा मजा आ रहा है, वो मैं जूते खा रहा हूँ, ठीक है ना, ये नहीं है। एक्चुअली भगवान का मजा थोड़ी होता है कि जब भगवान से कोई भी बंदा दूर होता है, तो उस तरह एक दो
जी। ऐसे अक्सर हम सुनते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि जब भगवान की इच्छा होगी तब हम मंदिर आएंगे, या इस श्लोक के हिसाब से सुने तो अगर हमारे प्रारब्ध में होगा तब हम मंदिर में आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। तो ये जो प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, इसका क्या अंडरस्टैंडिंग समझनी चाहिए इसके उत्तर में?
अंडरस्टैंडिंग तो होती है सब प्रचारों के अंदर, बोल नहीं सकता बेचारा उस वक्त ना, वो बोल नहीं सकता उसके मुंह पे कि मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है, मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है, अंडरस्टैंडिंग तो ये होती है कि काम चोर है, अब बोल नहीं ना सकते उसके मुंह पर, तो फिर उसको घुमा फिरा के कहते नहीं ऐसा है वैसा है ऐसा करो, उसका उत्साह बढ़ाते हैं। हकीकत तो ये कि भाई जब भगवान इच्छा करेंगे तब ऐसा होगा, भगवान जब चोरी चकारी करते हैं तो भगवान इच्छा नहीं कर रहे होते, तो क्यों पूछते भगवान की इच्छा के बारे में, झूठ बोल रहे होते हैं, तो अब इसका क्या इलाज है? वो एक देखो सीधी सीधी बात है, जिसने कसम खाई हुई है ना, देखो भगवान भगवान की जो इच्छा है ना, हम कहते हैं ना भगवान की इच्छा के बगैर पत्ता नहीं हिलता, ठीक हो गई बात, पर उससे भी बड़ी इच्छा है एक 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 बंदे की इच्छा है, वो जीव की ढिठाई। यानी एक भगवान है जिसने पूरी ये सृष्टि बनाई है, पूरी कायनात सब कुछ है, सब कुछ उसके पर चलता है, ठीक है, वो एक एक ढीठ जीव को वापस नहीं ले जा सकता, अंदाजा लगाओ उसकी ढिठाई का, नहीं ले जा सकते, फैक्ट है आपका क्या, अदरवाइज क्या आपका क्या ख्याल है, अगर वो ले जा सकते तो ले लेके जाते, उससे नहीं जाना भाई, आपको अगर कोई बंदा ले जाए एक ऐसी जगह पर जहां आप नहीं आना चाहते, वहां जो शोर मचाओगे ना तो वहां जाके मेरे को क्या लगा, मैंने कहा बोला था मुझे लेके आओ, तो यही है वो जीव इसी तरीके का है, वो गोलक वृंदावन अगर आपको लगता है ना जैसे, तभी ये जवाब हमेशा इस तरीके से होता है, महाप्रभु को जब बोला वासुदेव दादा ने भाई सबको ले जाओ, आप सबको ले जाओ, तो अब महाप्रभु सबको ले जाते उठा के, महाप्रभु पता है क्या करेंगे वहां जाके, जो यहाँ कर रहे वही करेंगे वहां जाके, तो इसको तो इसको रिफॉर्मेशन इसको जाने की कोई इच्छा नहीं है, वो वहां भी शोर मचाएगा, इनफैक्ट वो इधर है क्यों, उसने रह रहना था इसलिए यहाँ है, तो इनफैक्ट तो इसीलिए इसका इलाज यही है कि हम सिर्फ उसको प्रीच कर सकते हैं, हम उसको इंस्पायर कर सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं और उसको बोल सकते हैं अपनी अक्ल को हाथ मारो कि बात समझ आए, इतना ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, वो नहीं करेगा तो नहीं करेगा, नहीं करेगा तो अभी प्रचारक को ये भी चीज़ है, मैं समझता हूँ ये मेरा जाति ऑफकोर्स मेरी जाति रहा है क्योंकि आपने मुझे जाति तौर पर सवाल पूछा है, कि प्रचारक को ये भी देख लेना चाहिए कि मैंने जो है ना, मैंने मेरा काम है भगवान का मैसेज उसको पहुँचाना, ठेका नहीं ले रखा मैंने उस बंदे को, कई बार जो है ना वो ठेके पे ले लेते उस बंदे को, नहीं इसको मैं लेके जाऊँगा, इसको मैं प्रचार करूँगा, ये तुम भाई अपना देखो पहले, वो अगर तुम्हारी भगवान की का मैसेज है लेता है बहुत अच्छी बात है, नहीं लेता तो मेरे जेब से तो कुछ नहीं है उससे, तो उससे वो प्रचारक बड़ा अपनी जिंदगी आसान बना के रख सकता है कि भाई ऐसा नहीं है, और ये जिसका प्रचार मैं कर रहा हूँ वो खुद कह रहा है, अगर वो ये कह रहा है कि विमर्शे यथे दशेषे न यथे चसि तथा करूँ, तो इसको कहते हैं अंग्रेजी में मोर लॉयल देन द किंग, जो काम उसने नहीं बोला कि इसको जबरदस्ती खींच खाच के घसीट के लेके आओ, क्यों काम का कोशिश कर रहे हो, वो नहीं चलेगा उस तरीके से, आप उस क्योंकि भक्ति मती न कृष्ण ने परतो स्वतो, ठीक है ना, विधो देता ग्रह बता, सो वो नहीं लगती, वो अगर किसी की उसके भगवान का निर्देश है, उस निर्देश उसको इन्फ्लुएंस कर गया टक गया, वो चॉइस उसकी होगी, और जब वो उसको एग्जीक्यूट करेगा तब होगा, अदरवाइज कोई घुट्टी नहीं है कि सबको ले आओ, तो फिर अगर अगर होती तो हमारे यहाँ पूर्ववर्ती आचार्य जितने भी है सबके क्रेडिबिलिटी पर जो है सवाल या निशान लग जाएगा, इसका मतलब ये इतने केपेबल नहीं थे लेके गए सर को, उसको ये काफ़ नहीं था क्या, तो वो उस तरीके से काम करता नहीं है, हम सिर्फ उसको प्रचार कर सकते हैं, उसके बाद उन्हें इस तरह के बहाने मारने हैं कि जी भगवान जब बुलाएंगे तब आएंगे, तो वो तो फिर बोल नहीं सकते ना कि जब यमराज का बुलावा आता है तो बुलाते नहीं ले ही जाते हैं फिर सीधा, तो फिर वो उस तरह तो फिर वो अब क्या करो फिर, ठीक है उसका फिर इंतजार करो फिर तमाशा देखने का
इसमें समय में तो समझना चाहते हैं, जैसे हम अक्सर ये पढ़ते हैं कि तीन प्रकार के डुअर हैं, हम इस तरह समझाते हैं, जीव की इच्छा, कर्म और भगवान अल्टीमेटली। तो भागवतम में अलग अलग प्रसंग में अलग अलग को फोकस बनाया हुआ है, कहीं पे जीव को, कहीं पे कर्म को, कहीं पे भगवान को। अब इस श्लोक में ऐसा लग रहा है कि
हाँ कर्मों को फोकस बनाया,
कर्मों को फोकस या प्रकृति को फोकस बनाया हुआ है। तो कब कहाँ पे कौन सी चीज एप्लीकेबल होगी, इसका कोई मापदंड है? या
जाहिर बात है, आप जब आप फिलॉसफी पढ़ते हैं तो आप फिलॉसफी को आइसोलेशन में नहीं लेते, आप हार्मोनाइज करते पूरी चीज को, यही तो है समावेश।
ना देने के लिए कह रहे हैं कि
ऑब्वियसली सांत्वना देने के लिए कह रहे हैं, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो श्लोक है आप देखो ना, इसमें अदृष्टा, इसके अंदर भगवान का कोई रोल ही नहीं है, ये तो पूरा कर्म पे डाल दिया सारा कि अदृष्टा। अब अदृष्टा कौन है? तो अदृष्टा इसको फेट पे डाल दिया, वो किस्मत होगी। अब वो किस्मत लिखने वाला कौन है फिर? या तो कम से कम विधाता पे तो जाए, वहां पे जाते हैं तो चलो ब्रह्मा की बात होती है, फिर और ऊपर जाते हैं तो फिर ठीक है आप भगवान पे जाते हैं कि अल्टिम नियंता वाला सिस्टम, तो वहां नहीं है। तो ये भी जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी स्टेज बाय स्टेज है। अब देखना पड़ेगा, कोई बंदा बड़ा ही बहुत ही मामूली सा आदमी है, उसको इतना पहले यहां तक समझ आता है ढारस बताने के लिए, तो फिर उसके बाद जब आप आके लेके जाते पूरा सच जो है ना, सच भी जो है ग्रेडेशंस है, ठीक है ना। एब्सोल्यूट ट्रूथ एब्सोल्यूट है, पर उससे पहले जो रिलेटिव कई सारी चीजें होती है जिससे जो है एब्सोल्यूट तक अप्रोच करने में आसानी होती है। ऐसा नहीं कि एनफ रिलेटिव ट्रूथ मेक्स एन एब्सोल्यूट ट्रूथ, ये हरगिज नहीं है ऐसा कि 100% ऑफ रिलेटिव ट्रूथ मेक्स एन एब्सोल्यूट ट्रूथ। एब्सोल्यूट ट्रूथ इज एन एब्सोल्यूट ट्रूथ इन इट्स ओन, लाइक इन ओन कैटेगरी, इन इन ओन क्लास, बट रिलेटिव ट्रूथ जो है वो एब्सोल्यूट ट्रूथ को अप्रोच करने में आसानी पैदा करती है। तो ये सम ऑफ दोस थिंग्स है कि हाँ हमारे इससे क्या है, डिटैचमेंट आती है कि जी हमारे हाथ में नहीं है जी, किस्मत बहुत मेहरबान है। अच्छा अब इसका डाउन साइड क्या है? डाउन साइड ये हो गया जो आपने बोला कि मेरे हाथ में नहीं है तो मेरी जिम्मेदारी भी नहीं है, तो भगवान बुलाएंगे तो आएंगे, तो वो डाउन साइड। तो इसीलिए यू हैव टू इंट्रोड्यूस कि जीव का क्या रोल है, कर्मा का क्या रोल। अब अच्छा बात सुनो, अब जीव की इच्छा है, अब मैं इसको घुमाता हूँ उस चीज़ को, जीव की इच्छा के बगैर जो है जीव भगवान धाम नहीं जाएगा, ठीक हो गई बात। अब अगर जीव इच्छा कर लेगी, जीव मैंने जितने कर्म करे, जितने पाप करे, जितने चोरी चकारियाँ 420 करी है, उसका जो है मैं इच्छा करता हूँ कि मेरे को उसका फल ना मिले, ये तो कमाल होगी। तो इस तरह का थोड़ी ना मामला, भाई आप भगवत धाम नहीं जाना चाहते, वो इच्छा आपकी ठीक है, पर वो कर्म आपने करे भोगने पड़ेंगे आपको। आप वहाँ ये लॉजिक नहीं दे सकते कि देखो मेरी इच्छा नहीं होती तो मुझे भगवान भी वापस नहीं ले जा सकता, तेरे को कुछ ले नहीं जाएगा, तेरे को दे जाएगा सारा जो तेरा कर्म का फल है। तो वो मामला इस तरह है। तो किसकी क्या लिमिट है, तो हर फिलॉसफी का मिसयूज हो सकता है। तो ये मिसयूज है एक्चुअली जो आपने बताया, ये एक फिलॉसफी है, उस फिलॉसफी का मिसयूज करते।
और इसी में एक आखिरी प्रश्न कि जैसे धृतराष्ट्र का प्रसंग आता है
जी,
कि उनको एक साथ 100 पुत्र की मृत्यु देखनी पड़ी, और भी जैसे श्रीमद भागवत में ये प्रसंग चल रहा है, यहाँ पे उन 6 पुत्रों का तो प्रसंग है कि उनको क्यों फल मिला
जी,
बट कहीं पे वसुदेव और देवकी का प्रसंग है कि उनको ये इतनी पीड़ा क्यों सहनी, ये उनके कर्मों के कारण या उनके।
आई एम नॉट अवेयर, बट दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि जब यहाँ पर इन्होंने ये बात बोली, ये फिलॉसफी जो नंद महाराज बोल रहे हैं कि देखो तुम्हारे जो 6 बच्चे मारे गए कि ठीक है ना भाग्य के हाथ में से आ रहा होता, तब उस वक्त नंद महाराज को ये बात आनी थी, ये 6 बच्चे जो लौटा हुआ कभी वापस नहीं आता, लौट के वापस आएंगे, कृष्णा जो है ही विल डू दैट। इनफैक्ट ये जो है ये आइदर विश्वराज चक्रतिपाद और जी गोस्वामी इज मैंशनिंग दिस कि वेल ही इज स्पीकिंग दिस वर्ड, जब ये श्लोक को बोल रहे हैं उनको ये बात मालूम नहीं है कि आगे जाके जो है ये फिलोसफी कट जाएगी कि जो है जो नामुमकिन तरीन काम है कि जी कोई मरा हुआ को वापस थोड़ी आता, वो ले आया भगवान वापस। तो इसी से भगवान की सुप्रीमेसी कि उन्होंने जो फेट का जो है कि वो फाइनल मृत्यु का मतलब क्या है, इस दुनिया की आखिरी हकीकत है ना, झुटला दी भगवान ने, यू कैन डू दैट, सो दैट्स देयर। सो वो एग्जाम्पल जो है इस पर फिट होता है कि अगर कोई कहता है कि फेट पर ड्रॉ है, कृष्णा कैन चेंज द फेट,
बट कहीं पे वसुदेव और देवकी का वर्णन नहीं आता कि उनके
कर्म के। आई डोंट नो किसी ने और पढ़ा हो तो बता सकते हैं कि वाय उनको उनको इतनी तकलीफ झेलनी पड़ी। शुक्रिया।
जैसे आपने बताया कि जब भाव की अवस्था में आते हैं तब तक वो कर्म रहते हैं, उसके बाद ही खत्म होते हैं। एक मैंने कहीं ये भी सुना है कि जब कोई भक्ति में आता है वो याद नहीं किस स्टेज पे, बट भगवान उनके सारे कर्मों का अकाउंट ले लेते हैं, देन उनको कुछ अगर देते हैं तो प्रारब्ध उनके स्प्रिंकल करते हैं आचार्य आते हैं कि तो वो किस स्टेज पे होता है, वो स्टार्टिंग स्टेज में भी होता है
ना, जब भक्ति आप जो बेसिक एनओडी जब शुरू होती है तो वही तीन चीज है ना, छह भक्ति के लक्षण है, उसमें से दो साधना भक्ति के लक्षण है, दो भाव भक्ति के लक्षण है, दो प्रेम भक्ति के लक्षण है, तो मोक्ष लघुदा कृत जो है ये भाव भक्ति का लक्षण है और सुदुर्लभा, हाँ मोक्ष लघुदा कृत एंड सुदुर्लभा, ये दो चीज जो है ये भाव भक्ति के लक्षण है। मोक्ष लघुदा का मतलब क्या हुआ कि यानी कि लिबरेशन, तो लिबरेशन कब होगा, जब कर्म खत्म होगा तब लिबरेशन होगा ना, तो वो भी छोटा पड़ जाता है, तो ये दैट्स बिकॉज ऑफ भाव भक्ति। उससे पहले तक जो है जब तक आप नहीं आते तो ये लिबरेट होना तो नहीं होता इस तरीके से, सो दैट यू नीड दैट थिंग ऑफ भाव, सो टू गो बियॉन्ड दैट, अदरवाइज कर्मा फिनिश करने के तो वही यही हो गया जो आप हम जो हमारा युग धर्म का क्या मतलब है, हरे कृष्ण महामंत्र करो कर्म खत्म हो जाता है, नामाभास में तरने का क्या मतलब है, यही तो मतलब है कि नामाभास के स्टेज में जो है आपका कर्म खत्म, यू कैन बी लिबरेटेड, विच मीन्स वॉट यू कैन अटेन एनी ऑफ दिस लाइक फाइव काइंड ऑफ लिबरेशन। सो ये बार बार क्यों आते, दिए मानंद गिरंदर विहार मत सेवनम जना जो है वो श्लोक इसीलिए है, वो प्रैक्टिस है उन डिवोटर्स को, उनको मालूम है से आ गया तो मैं भगवान की प्रेममयी सेवा मिल सकती है, मैं पांच तरीके की मुक्ति में, पांच भी नहीं चार तरीके की मुक्ति में जो है मैं क्यों जाऊँ, वही लेना होता तो हरे कृष्ण महामंत्र आप जो करो कीर्तन करो निकल जाओगे, यू डोंट नीड दिस, ये सारा कुछ कनेक्टेड है। जब ये हर जो जब वो कह रहे हैं दीक्षा पुरुषचर्य उपेक्षा ना करे, इसका क्या मतलब है कि ये हरे कृष्ण महामंत्र इतना पावरफुल है कि आपको दीक्षा की भी जरूरत नहीं है, यानी कि विद नाम अबा स्टेज जो है आप निकल सकते हैं, बट इफ यू नीड शुद्ध नाम का मतलब क्या, यू नीड प्रेम देन यू नीड शुद्ध नाम, एंड इफ यू नीड प्रेम दैट मीन्स यू आर गोइंग फॉर रिलेशनशिप, यू आर नॉट गोइंग बियॉन्ड द मोक्ष, प्रेम कुमार तो महान, तो इस वजह से देन यू नीड शुद्ध नाम, यू डोंट नीड शुद्ध नाम टू गेट लिबरेटेड, हो तो इससे पहले हो जाता काम, कर्म काटना जो है कर्म काटने के लिए शुद्ध नाम इस्तेमाल हो उससे बहुत पहले हो जाता काम। वट एवर देन इट्स कृष्णा की इच्छा है, क्या है सी कुछ चीजें आपका तो लेफ्ट ओवर है ना, प्रेम जब तक आप शरीर में हो तो प्रेम के अवस्था के बाद जो है जब छोड़ते हो क्योंकि शरीर तो आपका कर्मा है ना, तो क्या करो उसका, दैट्स देयर, सो इट्स स्टिल देयर, दैट्स द डिफरेंस बिटवीन प्रेमा एंड बियॉन्ड प्रेमा, ठीक है ना, आप प्रेमावस्था इस दुनिया में प्राप्त कर सकते हो, देयर आर थिंग्स बियॉन्ड प्रेमा, दैट्स व्हाई देयर इज अ गोलोक वृंदावन, ठीक है ना, इट्स लाइक देयर बिकॉज देयर इज अ गोलोक वृंदावन देयरफॉर देयर इज अ वृंदावन एंड बिकॉज देयर इज अ भाव ऑफ वृंदावन ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दैट भाव ऑफ वृंदावन यू हैव दिस आइलैंड वृंदावन कॉल्ड द टेम्पल्स, इट्स नॉट द अदर वे अराउंड, मेरे मंदिर से जो है भाव वृंदावन निकलता या गोलोक वृंदावन निकलता, गोलोक वृंदावन से जो है मेरा मंदिर निकलता, that's like that, so that's why there is, agar aisa hi hai ki there is absolutely no difference between them and here, so then there is no point of going anybody going back home back to garden, there is such a thing, you see, le rahe hai na tabhi to hai, tab to bhav ke wo khatam ho jata, main ye kaha obviously khatam ho raha tha, tabhi to maine bola na abhi, jab aap na kya kehte hain shraddha se shuru kar rahe hain sadhu sangh ki, because it's pure devotional service, जाता जा रहा है कम होता जा रहा है होता जा रहा है होता, अनर्थ निवृत्ति का क्या मतलब है, अनर्थ क्या है, आपके कर्म ही तो बना रहे हो, क्या बना रहे हो, और करके अल्टीमेटली फिनिश हो जाता, यस सर्व के नाम मां जी कम,
हरे कृष्ण जी, जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कंसोल करने के लिए जो है नंद महाराज वसुदेव जी को बोल रहे हैं, देन वी सी इन सेम सिनेरियोज इन भागवतम इवन भगवदगीता ऑल्सो, अर्जुन हैज अ लेमेंटेशन, तो उसके लिए भगवान ने उनको पूरा भगवदगीता बोला, जब हिरण्यकशिपु वो डिवाइन फिलोसफी फॉलो करता है वो इसी लेमेंटेशन को कंसोल करने के लिए, और यहाँ पे उसी लेमेंटेशन को कंसोल करने के लिए अलग तरह की एथिस्टिक फिलोसफी यूज होती है, तो वट इज मीन्स दिस इज पार्शियली ट्रू, बट वट इज द मतलब बेसिकली भगवान ने जब लेमेंटेशन अर्जुन की दूर करी तो इट वॉज द अल्टीमेट फिलोसफी, तो किस आधार पे देखा जाए, मतलब कि एक साधक को कैसे देखना चाहिए इस फिलोसफी को, इस पर्सपेक्टिव को, क्या समझा जाए?
अच्छा सवाल है, इनफैक्ट इसमें दो बातें आती हैं जो मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि आपने हिरण्यकशिपु वाला स्टैंड पॉइंट भी लिया और भगवान का, तो वहाँ पे अर्जुन क्या कह रहे हैं ना, हम फीडबैक वहाँ से लेंगे, नष्टो मोहा स्मृति लगता तत्प्रसाद अधिक अच्छे थी, उनको भगवान का प्रसाद मिला है, वो सो वो भगवान का प्रसाद है, इसलिए कि बिल्कुल प्रसाद कहाँ से आता है, भगवान के मुँह से ही आता है ना, तो वही मुँह से है तो प्रसाद। अब वो और दूसरी तरफ आप हिरण्यकश्यप का फिलॉसफी की बात कर रहे हो, तो इसीलिए जो पहले जो प्रेमानंद प्रभु ने इसी तरह गौर सकता कि वो उसकी नीयत इंटेंट जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। इस फिलॉसफी क्या करके देखिए, फिलॉसफी किताब जो होती है बेजान होती है, जिसमें जान है इंसान वो इसको इस्तेमाल करता है, तो जाहिर बात है उसका अपर हैंड रहेगा। तो अगर वो खुद जो है उसका दिमागी तौर पर जो है वो ट्विस्टेड है तो वो सारा मोड़ देगा उसे उठा के, जैसे कि हिरण्यकश्यप ने मोड़ा। फिलॉसफी तो न्यूट्रल है ना, फिलॉसफी किसी के लिए, देखिए फिलॉसफी हर किसी के लिए न्यूट्रल है, ना किसी का दोस्त है ना किसी का दुश्मन है। ये यहाँ से शुरू हो रही है बात, समम सर्व सर्वभूतेषु वाला सिस्टम। अब भाई जो ले लेगा तो वे बचंती तमाम भक्त्या वाली बात है। तो इसीलिए इस तरह ऐसा नहीं कि फिलॉसफी ये वाली फिलॉसफी अच्छी है बुरी है, इस्तेमाल है इसका। अब मेरे हिसाब से बुरी है। अच्छा किसके लिए बुरी है? जो उससे आगे निकल गया है उसके लिए पीछे वाली ये लोअर स्टैंडर्ड है इस हिसाब से, पर जो नहीं निकला उसके लिए बड़ा यूजफुल है। तो इस्तेमाल करना ये कर्म मीमांसा जो है, अब यही सेम चीज़ तो अब उन्होंने नहीं करनी आगे जाके भगवान ने खुद गोवर्धन लीला के लिए। तो हर चिंता में मैंने बताया इस दुनिया में हर चीज़ का इस्तेमाल है, तो वो इस्तेमाल पता करना और हर चीज़ की अपनी जगह। तेना तक तेना भजन वंजिता का मतलब यही है कि उसका हर किसी का जस्ट कोटा है, वो एलोकेटेड उस तरीके से। मान जी का सवाल, वैसे 9 बज गए हैं तो बाकी उठ जाए।
तो जैसे भरत महाराज के केस में आता है कि वो भाव भक्ति पे थे फिर भी उन्हें हिरण का शरीर,
मैं मेरे दिमाग में चल रहा था ये पॉसिबल क्वेश्चन है, तो ठीक है ये क्वेश्चन बार बार उठता ही है। सो ये बार बार वही आंसर रिपीट होता है कि ही वॉज ऑन द बॉर्डर, आसक्ति भाव जस्ट लाइक वो जस्ट लगा उस तरीके से, नॉट कम्प्लीटली उसके अंदर चले गए थे पूरा। सो ही वॉज भाव भक्ति लगा जैसे लाइक संध्या जैसे होती है, इट्स लाइक दैट। बिकॉज ये आपको समझना पड़ेगा एक स्टेज दूसरे स्टेज के साथ इस तरीके से है जैसे कि ये एनालॉग होते हैं, कहते हैं ना कि ऐसे एकदम 0101 नहीं होता, मिलता हुआ जाता। तो लाइक ही वॉज ऑन दैट उसके अंदर, एंड तभी वो एक एक्सेप्शनल केस है। भागवतम में वैसे भी यूजुअल केसेस हैं भी नहीं, सारे एक्सेप्शन के, आप एक कोई भी उठाओ कोई भी नॉर्मल केस नहीं है, क्योंकि नॉर्मल केस की जरूरत नहीं, नॉर्मल केस तो आदमी देख ही रहा होता है। जैसे कि जब कोई पिक्चर बनती है तो अब नॉर्मली चीज़ की पिक्चर बनती है, आम आदमी की पिक्चर क्या बनेगी? सुबह उठा, नौकरी करने गया, दाल रोटी खाई, सो गया, वहाँ पर गया, बॉस के छितर खाए, घर पर आए, बीवी के जूते खाए, हो गया वो। इसमें पिक्चर क्या तो फ्लॉप हो जानी चलने से पहले, तो वो है ही पिक्चर तब बनाई जाती है कि जब देखता कि वो आम आदमी था पर कुछ बहुत खास कुछ कर दिया। तो उसी तरीके से तो आम तौर पर जो है जो भाव में चला जाता है तो फिर आगे प्रेम रुकता नहीं, फिर वो ऑटोमेटिक। बिकॉज इसीलिए जो हम गाते हैं जब प्रेम भक्ति जहाँ होई थे, प्रेम भक्ति जहाँ कोरी थे, नहीं वो करने का काम खत्म हो चुका है उससे पहले। साधना भक्ति करी जाती है, साधना भक्ति होती नहीं है, तो बार प्रेम भक्ति करी जाती तो वो करी नहीं जाती, वो होती है। तो क्योंकि भाव ऑनवर्ड्स वो ऑटोमेटेड स्टेज पे चला जाता है, इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम यू कम टू दैट। सो इसीलिए कोई ऐसा इंस्टेंस मिलता नहीं है, जस्ट वन इंस्टेंस जहाँ पर ये चीज़ देखा गया वो बिल्कुल बॉर्डर केस था, एंड इसीलिए उसका बड़ा एनालिसिस भी होता कि जी क्या हुआ था, व्हाट हैपेंड। और उससे और एक पर्टिकुलर पॉइंट जो उससे जो है कई बार वी मेक दैट पॉइंट कि इसलिए भक्ति के अंदर जो सावधानी बरतना इतना ज़रूरी है। अच्छा इस कॉन्टेक्स्ट में वो चीज़ ऐसा नहीं कि भाव भक्ति से गिरते ही रहते सारे। ठीक है, हम यहीं पे जो है समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रभु।